ओम शांति। भट्टी है ही ज्वाला स्वरूप योग भट्टी, और इस साल में यही लक्ष्य है कि जीवन में अब ऐसी योग की ज्वाला को हम प्रज्वलित करें, ताकि जो अब अंतिम आहुति या अंतिम परिवर्तन शेष है उसको हम संपूर्ण कर दें। क्योंकि बाबा की अनेक मुरलियां जो चली है उसमें अगर बाबा के भाव को समझा जाए तो जितनी भी अव्यक्त मुरली चली या साकार मुरली में बाबा का भाव यही रहा कि हर बच्चे बाप समान बन जाए। आज की मुरली में भी रात्रि क्लास का जो हिस्सा था बहुत गहराई से बाबा ने कहा कि धीरे धीरे देने का पार्ट लेने का पार्ट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक हो जाएंगे। एक होने का भाव बाबा का यही था कि सब बच्चे बाप समान बन जाएंगे, और जब वो समानता की स्टेज आ जाएगी तो उसमें फिर कोई भी प्रकार के विकर्म नहीं रहेंगे, लेकिन आत्मा एकदम शुद्ध पावन हो जाएगी। बाबा का इस संसार में आने का लक्ष्य भी यही है कि हर आत्मा को पावन बना करके ही घर ले जाना है या अपनी राजधानी में भेज देना है। तो इसीलिए अब इसका मुख्य आधार अगर देखा जाए तो ये ज्वाला स्वरूप योग बहुत आवश्यक है। नॉर्मल जब योग करते हैं तो उसमें विकर्म बनते नहीं है, लेकिन जो विकर्म जलने चाहिए वो जलते भी नहीं है, क्योंकि उसमें एक फ्लक्चुएटिंग की स्टेज रहती है। कभी कैसा कभी कैसा, कभी बहुत अच्छा बाबा के साथ योग लग जाता है और कभी देखो तो बीच बीच में और कहीं मन चला भी जाता है, भले नेगेटिव या व्यर्थ में नहीं जाएगा लेकिन और कोई चिंतन में चला जाता है। तो जब उस चिंतन में भी जाता है मन तो नेचुरल है कि उसमें वो विकर्म दग्ध होने वाली स्थिति नहीं है। ये तो हम सभी जानते हैं कि आत्मा के अंदर अनेक जन्मों के विकर्म भी है और पाप कर्म भी है। पाप कर्म और विकर्म में क्या अंतर है? और योग से किसको जलाना है? हाँ, योग से विकर्मों को जलाना है, और पाप कर्म किसको कहा? पहले तो ये हमें समझना होगा कि विकर्म और पाप कर्म में अंतर क्या है। पाप जो है बड़े होते हैं, विकर्म जो है छोटे हैं। जैसे कोई साधारण सी बात के लिए भी कभी झूठ बोल लिया, कभी किसी को मजाक में भी किसी की क्रिटिसाइज कर दिया, परचिंतन कर लिया, ये सब विकर्म हो जाते हैं, छोटे छोटे। जो छोटी छोटी कमजोरी के वश, अलबेलापन के वश, आलस्य के वश, है ना, जो कर्म हो जाते हैं उसको कहते हैं विकर्म। विकृति है आत्मा में, उस विकृति के आधार पर। लेकिन पाप कर्म जो बाबा ने कहा, वो जैसे काम विकार के वशीभूत होना, देह अहंकार में आकर के कर्म करना, जहां दूसरों को भी दुख दर्द पहुंचाते हैं, जो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि हिंसा खाली एक प्रकार की नहीं है, लेकिन किसी को वाणी के द्वारा भी दुख देना, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। तो ये जो बड़े बड़े विकारों के वशीभूत होकर के जो कर्म हो जाता है, जान करके जैसे किसी को चोट पहुंचाने के हिसाब से किया, इसको कहते पाप कर्म। और ये पाप कर्म कभी कभी दो तीन मिल करके भी किया जाता है, दो तीन आत्मा इकट्ठे होकर के करते हैं, क्योंकि पाप कर्म सिंगल हैंडेड नहीं होता है, विकर्म सिंगल हैंडेड होता है। झूठ बोल दिया, परचिंतन कर लिया, ये बात अलग है, लेकिन जो पाप कर्म है, वो पाप कर्म में दो आत्माएं इन्वॉल्व हो जाती है, दो या अधिक, तब ये पाप कर्म बन जाता है। और ये पाप कर्म को दग्ध करना पड़ता है, उसके लिए ज्वाला स्वरूप योग चाहिए, तभी ये दग्ध होते हैं। अच्छा, विकर्म को समाप्त करने की विधि क्या है? तो बाबा जो कहते हैं कि बच्चे, जब आपसे विकर्म हो जाता है और आप अपने दिनचर्या को देखो, चार्ट को देखो, और उस चार्ट में आपने रियलाइज किया कि आज मेरे से ये गलती हुई, जिसको हम गलती समझ लेते हैं, तो ये गलतियां हुई मेरे से जो श्रीमत के विरुद्ध थी, ये मर्यादा के विरुद्ध थी, ये गलतियां मुझसे हुई। अब रियलाइजेशन जैसे हुआ, तो बाबा को जब सच्चाई से लिख करके देते हैं, तो बाबा कहते आधा माफ होता है। तो आधा विकर्मों को माफ सहजता से हो जाता है, लेकिन पाप कर्म की माफी नहीं मिलती है। आज बाबा ने बहुत स्पष्ट ये मुरली के अंदर कहा कि कई बच्चे जब काला मुंह कर देते हैं, तो 12 मास तो यहां आना ही नहीं है। कितने बाबा ने कहा, यहां के नियम बहुत कड़े हैं, आना ही नहीं है। और उसके बावजूद भी 12 मास के बाद भी अगर आते हैं, तो बाबा कहते मैं इस बच्चे का मुंह देखना नहीं चाहता, इस बच्चे का मुंह देखना नहीं। तो माफी तो बहुत दूर की बात है, पाप कर्म की कभी भी माफी नहीं मिलती है, विकर्मों की माफी मिल जाती है। कि बाबा के सामने लिख करके दिया, तो बाबा उसको आधा माफ कर देता है, बाकी उन जो आधा रहा, उस विकर्म के लिए जिसके प्रति मैंने किया, मानो पर चिंतन किया, तो जिसके प्रति मैंने किया, उस आत्मा से क्षमा ले ले, तब वो माफ हो जाता है, वो आत्मा भी क्षमा कर लेती है। या फिर योग लगा करके वो विकर्मों को विनाश करना है। विनाश कैसे करेंगे? दृढ़ संकल्प से, कि अंदर में ये दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं स्वयं से, बाबा से, कि बाबा दोबारा ये गलती मैं नहीं करूंगा। इतना अटेंशन जब अपने ऊपर रखे तब ये विकर्म संपूर्ण रीति से विनाश हो जाता है। तो विकर्मों का विनाश करना है, लेकिन पाप कर्मों का दग्ध करना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है। और ये जलेगी साधारण योग से नहीं, ये जलेगा जब ज्वाला स्वरूप योग करेंगे, तब आत्मा का शुद्धिकरण इस तरह से होता है। और आत्मा, जैसे कहा बाबा ने, कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा कि जैसे सोना आग में डालते हैं तो एलॉय जल करके शुद्ध सोना बाहर निकलता है, और इस भट्टियों का भी यही लक्ष्य होता है कि भट्टियों में हम ऐसा पावरफुल योग करें, ज्वाला स्वरूप योग करें, जो हमारे अंदर की ये पाप कर्म के कारण जो एलॉय भर गई है कई जन्मों की, इस एलॉय को हम भस्म करके आत्मा शुद्ध सोना होकर के निखरने लगे। इसीलिए ये ज्वाला स्वरूप योग भट्टी, क्योंकि भट्टी माना ही परिवर्तन। जहां हम छोटे छोटे विकर्मों के लिए भी दृढ़ संकल्प धारी होकर के उस दृढ़ संकल्प को सींचते हैं, और जो पाप कर्म हुए हैं उन पाप कर्मों को भी दग्ध करना है, ये लक्ष्य है। अच्छा, तो ज्वाला स्वरूप योग में कितने प्रकार की अग्नि होती है, कितने प्रकार की अग्नि से जला सकते हैं, कौन कौन सी अग्नि प्रज्वलित करना है, क्या कहेंगे? पश्चाताप की अग्नि। अच्छा, और कौन सी अग्नि को प्रज्वलित करना है जिससे ये पाप कर्म दग्ध हो जाए? लगन की अग्नि। और हाँ, योग की अग्नि तो है ही है, है ना, लेकिन इस योग की अग्नि में कौन सी और अग्नि को जलाना है, और अग्नि को जैसे कहा ना, लगन की अग्नि, दृढ़ निश्चय की अग्नि, और नहीं, मैपन को तो जलाना है, अग्नि कौन सी चाहिए? अटेंशन की अग्नि नहीं होती है। मुख्य रूप से मैं तीन चार अग्नि जो मैंने को चिंतन किया है बाबा की मुरलियों के आधार से, उस बात को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी। तो सबसे पहली जो कहा, लगन की अग्नि। लगन अग्नि में कब परिवर्तित होता है? तो लगन किसको कहा जाता है? जैसे दुनिया के अंदर लगन होता है ना, लगन होता है मतलब रिश्ता जुड़ता है, लगन माना रिश्ता जुड़ा, सगाई हुई माना रिश्ता जुड़ा। तब कहते हैं ये रिश्ता जुड़ा तो हमारे यहां लगन लग रहा है, कहते हैं लगन लेना है। तो लगन माना एक रिश्ता जुड़ना, लेकिन रिश्ता जुड़ने से अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है, लगन से फिर मगन होना पड़ता है, और मगन फिर अगन बनती है। ये तीन स्टेप है, पहली स्टेप है लगन, दूसरा है मगन, और तीसरा है अगन। तो लगन माना जब रिश्ता, तो इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे जब योग में बैठो तो सर्व संबंधों का अनुभव करना है, सर्व संबंधों के आधार पर रिश्ता जोड़ना है बाबा के साथ। उसमें भी जो रिश्ता आपको प्रिय लगे उस एक रिश्ते पर फोकस करो। जैसे दुनिया में लगन होता है तो साजन सजनी का रिश्ता हुआ, उस रिश्ते को लगन कहते हैं। ठीक इसी तरह बाबा साजन और हम सभी सजनियां, तो सजनी रूप में बाबा के साथ में बैठ करके जब योग लगाते हैं तो उसका रस लेना शुरू करो। तो ये लगन लगी, लगन में कहीं ब्रेक नहीं होती है। जिस तरह से रिश्ता जुड़ा तो उसके बाद सारे और किसी की यादें समाप्त हो जाती है और एक की याद में, है ना, एक की याद में जुड़ जाते हैं। हर कर्म करते भी किसकी याद होती है, उसी की याद होती है, उसको कहते हैं लगन। ये फर्स्ट स्टेप। फिर जब लगन मगन में बदलता है, मगन माना उसी की ही याद में 24 घंटा जैसे निरंतर मन रमा रहे, मगन माना मन रमना, उसी की याद में मन रमने लगे, जिसको लोग दुनिया में कहते हैं भाई ये फलाने की याद में खो गए हैं, उसको और कुछ सूझेगा नहीं, उसमें समा जाना, उस याद में समाना, इसको कहते हैं मगन। और जब ऐसे मगन काफी समय तक होने लगे तब जाकर के अग्नि प्रज्वलित होती है। अग्नि माना वो तीव्रता, मगन की स्थिति की भी तीव्रता जब आ जाए तो तब अग्नि प्रज्वलित होती है। और इस तरह की अग्नि जब प्रज्वलित हो कि बस और कुछ नहीं, मैं और मेरा बाबा, जैसे बाबा के बीच में मुरली चली थी आशिक माशुक की, उसमें बाबा ने यही बात कही, दो दो न रहे एक हो जाए, ये है अग्नि। दो दो न रहे लेकिन एक हो गए, इसको कहते हैं अग्नि। जहां मैं न रहूं, मैं बाबा में समा जाऊं, उसकी याद में समा जाऊं, खो जाऊं, उसको कहते हैं अग्नि प्रज्वलित हो गई। और उस अग्नि में पाप कर्म दग्ध होने लगते हैं, उस अग्नि में पाप कर्म दग्ध होते हैं। साधारण योग में पाप कर्म दग्ध नहीं होते हैं। तो भट्टी माना ये अग्नि प्रज्वलित करना है। दूसरी अग्नि है जिसको कहा जाए पवित्रता की अग्नि। जैसे यज्ञ कुंड होता है और उस यज्ञ कुंड में अग्नि जरूर होती है कि जिस अग्नि कुंड में या यज्ञ की अग्नि में हर चीज स्वाहा हो जाती है, और स्वाहा होने के बाद उसकी जो खुशबू निकलती है वो एरोमा में पूरा प्रवाहित हो जाती है। जब स्वाहा करते हैं ना तो सच्चा घी स्वाहा करते हैं, जौ तिल स्वाहा करते हैं, तो वो घी के कारण जो है उसका जो एरोमा बनता है वो इतनी खुशबू वाला होता है, जो सामग्री उसमें स्वाहा करते हैं उसके कारण जैसे वातावरण के अंदर ऐसा एक एरोमा फैल जाता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन, ये ब्राह्मण जीवन यज्ञ कुंड है, और इस यज्ञ कुंड में पवित्रता की अग्नि को प्रज्वलित करना है। और जब इस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, आज की मुरली में बाबा ने यह बात बहुत अच्छी कही आरंभ में कि ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या। तो पहली बात तो बाबा ने श्रीमत कही और दूसरी बात बताई सेवा। तो ठीक इसी तरह ये पवित्रता की अग्नि जो हम प्रज्वलित करते हैं, उस पवित्रता की अग्नि में स्वाहा क्या करना है, तन मन धन समय स्वाह शक्ति संकल्प ये सब स्वाहा करना है, अर्थात उसको सेवा में सफल कर देना है। यानी इस पवित्रता की अग्नि में ये सब कुछ शुद्धिकरण हो जाता है और शुद्धिकरण हो करके ऊंच पद प्राप्त कराने का आधार बनते हैं। सेवा ये नहीं कि बस सेवा कर लिया हमने, जैसे तैसे कर लिया, पूरा हो गया, ये सेवा की अग्नि नहीं है जो शुद्धिकरण करे। लेकिन सेवा भी एक प्रकार की अग्नि का रूप तब लेता है जिसके अंदर शुद्धिकरण हो जाए। इतनी पवित्र भावनाओं से सेवा करना, शुद्ध फीलिंग्स के साथ सेवा करना, तब ये पवित्र होने लगेगा। हड्डी हड्डी, जैसे कहा दधीचि ऋषि ने, हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा किया। तो जब हम पवित्र फीलिंग्स के साथ, पवित्र भावनाओं के साथ सेवा करते हैं, तो ये सेवा जो है सिर्फ हमारा हर अंग का शुद्धिकरण नहीं कर रहा है, लेकिन एक ऐसा एरोमा क्रिएट करता है, एक ऐसा ऑरा क्रिएट करता है जिससे चारों ओर वो पवित्रता का वायुमंडल हर कोई महसूस करे। आज के वरदान में बाबा ने यह बात बहुत अच्छी कही कि बाबा आपको डबल ताजधारी कैसे बनाते हैं। हाँ, पवित्रता का ताज जो है रत्न जड़ी ताज से भी बहुत ज्यादा महान है, उच्च है, लेकिन ये रत्न जड़ी ताज से भी जो ऊंचा ताज हमें पवित्रता का मिलता है, वो कैसे मिला, क्या कहा बाबा ने मुरली में? हाँ, वरदान को याद करो। हाँ, लाइट का क्राउन बाबा देता है। कैसे देता है? अपने स्वरूप द्वारा। बताओ आगे। साक्षात्कार कराना है, अपने स्वरूप द्वारा अनेकों को साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। तो बाबा को जब हम पवित्रता की धारणा करते हैं, तो जैसे कहा ये ऐसा सेवा करते समय ऐसा एरोमा क्रिएट होता है जिससे हमारे अंग अंग का शुद्धिकरण हो जाता है। लेकिन खाली शुद्धिकरण नहीं, उसमें इतनी लाइट भर जाती है ना, कि फिर इन इंद्रियों से कभी कोई विकर्म भी नहीं होता है। और ऐसा लाइट का प्रभा मंडल क्रिएट हो जाता है जो अंतिम समय अनेकों को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेगा। तो इतनी पवित्रता की फीलिंग्स के साथ सेवा करना, ये है पवित्रता की अग्नि प्रज्वलित करना, जहां हर एक कर्मेंद्रियों का शुद्धिकरण हो रहा है। और इतना शुद्धिकरण हो जाता है कि इन इंद्रियों से अनजानेपन में भी कोई प्रकार का विकर्म तक नहीं होता है। तो इसको कहा ज्वाला स्वरूप योग, ये हमारे जीवन के अंदर है। तो ये पवित्रता की अग्नि को प्रज्वलित करना है। जब योग में हम बैठते हैं तो इतना शुद्धि हो जाए, तो जब सेवा इतनी पवित्र फीलिंग से किया होगा, तो इतनी पवित्र फीलिंग से सेवा करने के बाद आप योग में बैठो, कोई विकल्प तक नहीं चलेगा, विकल्प तक नहीं चलेगा। और ये पवित्रता की अग्नि ऐसी प्रज्वलित हो जाएंगी जो आत्मा का एकदम शुद्धिकरण हो जाए, चारों ओर जैसे लाइट का प्रभा मंडल महसूस होने लगे, इतनी आत्मा निखरने लगे इस पवित्रता की अग्नि में। तो ये दूसरी ज्वाला। तीसरी ज्वाला कौन सी है? तीसरी ज्वाला है जो अक्सर हम प्रदर्शनी में योग के चित्र में समझाते हैं। कौन सी? कि योग जब सूर्य के किरणों को एकाग्र करो कॉन्वेक्स लेंस में और नीचे रखा कागज भस्म हो जाए, जलने लगे, ये कौन सी अग्नि है? ये कौन सी अग्नि है? एकाग्रता की अग्नि। ये तीसरी है एकाग्रता की अग्नि। और ये तीसरी अग्नि एकाग्रता की ऐसी है जिसको कहा जाए कि योग माना एकाग्रता का अभ्यास। मन बुद्धि जहां एकाग्र हो जाए, और एकाग्रता अर्थात एक संकल्प में स्थित हो जाना या एक स्थिति में स्थित हो जाना। जब कोई भी एक स्थिति में हम एकाग्र हो जाते हैं, स्थित हो जाते, अपने मन बुद्धि को स्थित कर लेते हैं, तो वो एकाग्रता की अग्नि प्रज्वलित होती है। जो वो स्थिति है, वो स्थिति हमारे स्वरूप को क्रिएट करती है। इसीलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे स्मृति स्वरूप रहो। ये एकाग्रता की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ही बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे प्रतिदिन सुबह सुबह आप एक श्रेष्ठ स्वमान को धारण कर लो। भट्टी में क्या मिलता है रोज सुबह? अगले दिन से ही शाम को ही मिल जाता है, ताकि अमृत वेले से उस स्वमान में स्थित हो करके, क्योंकि अमृत वेले का समय ऐसा है जब वो अग्नि बहुत सहज प्रज्वलित हो जाती है। समय को वरदान है इसीलिए। तो इसीलिए जब उस श्रेष्ठ स्वमान में, उस स्थिति में अपने आप को स्थित कर लो और एकाग्रता के साथ एक की याद में, उस बाबा की स्नेह में, प्यार में समा जाओ आप, तब कहते हैं ये एकाग्रता की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और उससे हमारा संपूर्ण स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। जो विकर्म है वो भी दग्ध हो जाते हैं, पाप कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, संपूर्ण दग्ध हो जाते हैं। और इस तरह से आत्मा एकदम उज्ज्वल होने लगती है। जैसे कहा कि सूर्य की किरणों को एकाग्र किया जाए, अर्थात अमृत वेले ही बाबा से उस स्थिति में स्थित होकर के, स्वमान की श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर के बाबा की सकाश को अनुभव करना, क्योंकि ये सकाश ही अग्नि है। जैसे सूर्य की रोशनी को एक बिंदु पर एकाग्र किया, तो बाबा जो ज्ञान सूर्य है, उस ज्ञान सूर्य की के प्रकाश को एकाग्र कर देना मुझ आत्मा बिंदु के ऊपर, और उस बिंदु पर जब एकाग्र हो जाता है तो वहां से वो अग्नि प्रज्वलित होती है। एक टिक हो जाए, एक स्थिति में स्थित हो जाए। जैसे कहते हैं कि ये मोमबत्ती की लौ सीधी ऊपर जाती है, जरा भी हिले नहीं, उसको कहते एकाग्रता। और जब ऐसी एकाग्रता हमारे अंदर विकसित होने लगे, तब हमारे अंदर वो ज्वाला प्रकट होती है, ज्वाला प्रकट होती है और वो ज्वाला से सब भस्मीभूत हो जाता है। ये तीसरे प्रकार की ज्वाला। चौथे प्रकार की ज्वाला कौन सी है? चौथे प्रकार की ज्वाला है साइलेंस पावर। साइलेंस पावर भी ज्वाला का काम करता है। कैसे? आप सब में से कितने लोग ज्वाला देवी गए हैं मालूम नहीं? गए हैं कोई ज्वाला देवी? 3-4 लोग गए हैं। हिमाचल में ज्वाला देवी का मंदिर है, लेकिन ये ज्वाला देवी के मंदिर पर अगर जाएंगे ना तो वहां एक विशेषता है। वहां विशेषता यह है कि कुंड है, उस कुंड में पानी खौलता है, इतना खौलता है जो उसकी जैसे वराड बाफ निकलती है, इतना खौलता है। लेकिन आप हाथ डालो ना तो बर्फ से भी ठंडा होता है। ये वहां की ये विशेषता है कि पानी एकदम खोल रहा है लेकिन हाथ डालो तो एकदम ठंडा, एकदम ठंडा। ठीक इसी तरह ज्वाला रूप अर्थात इतने शीतलता हो अंदर में, इतनी साइलेंस पावर अंदर में हो, और ये साइलेंस पावर जो है ये जैसे कि जो बाबा कहते हैं ना शांति धाम वाले साइलेंस पावर, और जब ऐसी साइलेंस पावर अंदर में जमा हो जाती है तब हमारा स्वरूप संपूर्ण परिवर्तित हो जाता है। ज्वाला देवी बन जाते हैं। ज्वाला देवी इतनी ही शीतल है, जलाने वाली नहीं। जिसके अंदर वो शीतलता की शक्ति ऐसे है, इसलिए बाबा कई बार कहते हैं योग का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। हम योगी हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ही यह है कि अंग अंग शीतल, हर अंग हर कर्मेंद्रिया इतनी शीतल है उसकी कि कोई भी कर्मेंद्रिय उसकी चलायमान नहीं हो सकती है। गीत भी नहीं है अपना, योगी वही है सच्चा जो शीतल है ना। तो कहने का भावार्थ यह है कि ऐसे ज्वाला देवी बने लेकिन इतने शीतल, जो कहां भी खड़े हो जाए अगर तो सारे वातावरण को अपने वाइब्रेशन से इतना जैसे उस वाइब्रेशन का प्रवाह चारों ओर फैले और उस वाइब्रेशन के प्रवाह में आकर के एकदम जैसे शांति शीतलता प्रवाहित होने लगे, जिससे आत्मा के अंदर जो विकारों की तपत है वो सारी समाप्त हो जाए, 2500 साल के लिए समाप्त हो जाए या शांत हो जाए। ऐसी ये शीतलता अपने अंदर समा जाए। योगी वही है सच्चा जिसके अंग अंग शीतल हो, शांत हो, शांति के वाइब्रेशन। बाबा कहते हैं कि दुनिया के अंदर हर कोई शांति का ही भिखारी है, लेकिन तुम्हारे सानिध्य में भी अगर कोई आ जाए तो उन्हें भी वो शांति के सागर की, वो शीतल प्रवाह की अनुभूति होनी चाहिए। उनका मन भी जो व्याकुल है वो व्याकुलता उनकी समाप्त हो जाए, शांत हो जाए, ये तब होगा जब हमने इतना गहन स्वयं में अभ्यास किया होगा, अनुभव किया होगा। इसको कहते हैं ज्वाला स्वरूप योग, कि जहां बाबा से इतनी शक्ति हम अपने अंदर वो प्रकाश को भर ले कि फिर वो हमारे द्वारा सारे संसार के अंदर प्रवाहित हो। और जो कहा कि ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव करने के लिए लाइट माइट स्वरूप, जिसके लिए हमेशा कंपैरिजन होती है कि ये लाइट और माइट ऐसी है जो रेडिएशन का काम करे, है ना, ये भी अग्नि है। किसी को अगर कैंसर होता है तो उसको रेडिएशन दिया जाता है, और ये रेडिएशन क्या होता है, जला देता है, वो कीटाणु को जला देता है उस जगह पर से, है ना। तो इसी तरह लाइट हाउस माइट हाउस बन जाना, ज्वाला स्वरूप योग माना ऐसे लाइट हाउस माइट हाउस बन जाए, जो कोई भी कीटाणु अगर बचे हुए हैं, कमजोरी रूपी, वो कमजोरी रूपी कीटाणु भी जल करके भस्म हो जाए, समाप्त हो जाए, ऐसी पावरफुल लाइट और माइट स्थिति हो, लाइट हाउस माइट हाउस। शिव बाबा लाइट हाउस माइट हाउस तो है ही है, सोर्स है, लेकिन उस लाइट हाउस माइट हाउस के सानिध्य में हम भी ऐसे लाइट हाउस माइट हाउस बन जाए जो सारे विश्व के ग्लोब के ऊपर उस रेडिएशन को प्रवाहित करते हैं, जिससे सारे वातावरण के अंदर भी जो अशुद्धि है, अंत में तो यही स्टेज आनी है हमारी, क्योंकि अगर प्रकृति को भी पावन करना है हमें, हमारी दुनिया के अंदर, सतयुगी दुनिया के अंदर 2500 साल तक अगर प्रकृति भी इतनी सात्विक सतो प्रधान है, तो कैसे है कि अंत समय में सारे ब्राह्मण आत्माएं संगठित रूप में जब अपने उस वाइब्रेशन को प्रवाहित करेंगे रेडिएशन के रूप में, लाइट हाउस माइट हाउस बन करके, तो ये सारे संसार के ग्लोब से क्या हो जाएगा, अशुद्धि के कीटाणु सारे समाप्त हो जाए, भस्म हो जाए। ऐसी ये स्थिति है, इसलिए बाबा कहे, और लाइट हाउस माइट हाउस माना ज्ञान की लाइट और योग की माइट, योग की शक्ति स्वरूप स्थिति, लेकिन वो शक्ति स्वरूप स्थिति भी ज्ञान युक्त हो। समझ के आधार पर जब हम उस स्थिति में अपने आप को स्थित करते हैं, तब लाइट हाउस माइट हाउस कहा जाता है। ऐसे लाइट हाउस माइट हाउस जब अपने किरणों को चारों ओर, जैसे ये ब्रकुटी से, जैसे चारों ओर वो किरणें जब फैलती है, तो ये प्रकृति को भी शुद्ध सात्विक करती है, वातावरण को भी शुद्ध सात्विक बनाती है, और पूरा माहौल जैसे परिवर्तित होने लग जाए, और तब जाकर के यह सारा संसार परिवर्तन हो जाएगा, और इसी परिवर्तन से फिर हम आत्माएं बस ट्रांसफर होने वाली बात हो जाती है, जाएंगे घर निमित्त मात्र, थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर वापस अपने नई दुनिया में अवतरित हो जाएंगे, इतनी पावन स्थिति में अवतरित हो जाएं। तो इसीलिए कहा ये लाइट हाउस माइट हाउस वाला रेडिएशन हमें सारे संसार के ग्लोब पर उसको फैलाना है, प्रवाहित होने देना है। आज बाबा ने जैसे मुरली के अंदर बहुत अच्छी बात कही कि भारत देश के ऊपर कईयों ने क्या किया, राज्य लूटा, पहले मुसलमानों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, लेकिन बाबा ने कहा सबसे पहले किसने लूटा? रावण ने। कैसे लूटा? कैसे लूटा रावण ने? ये विधि बाबा ने बताया कि कैसे रावण ने लूटा हमको। बाबा ने कहा कि रावण ने अशुद्ध मत से, अशुद्ध मत से लूटा। बाबा की श्रीमत से हम उसको प्राप्त करते हैं, लेकिन रावण ने जो लूटा हमारी मत को ही परिवर्तित कर दिया। तो 2500 साल के बाद जब हमारी मत परिवर्तित होती है, हमारी बुद्धि परिवर्तित होती है, अशुद्ध मत के प्रभाव में हम आ जाते हैं। तो इसी तरह बाबा की जो श्रीमत है कि बच्चे लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में स्थित हो जाओ, और जब उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो वो ऐसा रेडिएशन का काम करेगा जो सारे संसार के अंदर कीटाणुओं को भस्म करेगा, और इस तरह से प्रकृति, वातावरण, वायुमंडल सारा शुद्धिकरण हो जाता है और 2500 साल तक ये शुद्ध रहता है। इतनी सुंदर वो दुनिया हमारे लिए बन जाती है ना? तो ये है लाइट हाउस माइट हाउस बनने की अग्नि, जो इन सबको शुद्ध कर, पवित्रता की अग्नि आत्मा को पावन करती है, सेवा की अग्नि हमारी इंद्रियों को पावन करती है, लेकिन ये लाइट हाउस माइट हाउस से हम वातावरण को, वायुमंडल को और प्रकृति को शुद्ध करते हैं। तो हर एक अग्नि का अपना महत्व है, अलग अलग चीज को शुद्ध करती है ना? और जितना बाबा की लगन की अगन है अंदर में, उतना जैसे हमारे एक एक रिश्ते भी शुद्ध होते जाते हैं। बाबा के संग हमारे सारे रिश्ते हैं, तो दुनिया के अंदर जो हमारे सतयुग से रिश्ते होंगे, जो बाबा ने कहा कर्म बंधन, कर्म संबंध में परिवर्तित हो जाते हैं, ये संबंधों में परिवर्तित हो जाती है। तो ये है ज्वाला स्वरूप योग। अब हम सभी बैठेंगे, विशेष इस ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव करने के लिए, और उसके लिए जैसे कहा कि आत्मिक स्थिति इतनी पावरफुल हो, जैसे मैं बीज और बाबा भी बीज रूप, और उस बीज रूप से जैसे आत्मा बीज में वो सकाश जैसे उतर रही है, जिस तरह कोई स्थूल वृक्ष होता है, स्थूल वृक्ष का बीज जो होता है वो अपने पत्ते पत्ते क्या वो फल फूल को फल को फल के अंदर जो बीज है उस तक भी अपनी सकाश कैसे पहुंचाता है, किस तरह से वो रस पहुंचाता है, तभी तो उस फल में भी रसना आती है। ठीक इसी तरह इस कल्प वृक्ष में भी बाबा बीज है, और उस बीज से सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की जो रस हम सब बीज तक जो फल लगे हुए हैं इस कल्प वृक्ष के, उस कल्प वृक्ष के फल के जो हम बीज है, उस बीज तक भी बाबा का वो रस कैसे पहुंचता है, और इतना शुद्ध रस पहुंचता है जिससे हमारे भीतर भी वो रसना पैदा हो जाती है। तो हम उसी स्वरूप में बैठेंगे और ये ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव करेंगे। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मन को दृढ़ संकल्प धारी बना दे, संगठित रूप में इसे दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाए, कि हमें ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है। इस ब्राह्मण जीवन रूपी यज्ञ कुंड में पवित्रता की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। और मैं आत्मा इस पवित्रता की अग्नि में अपने सारे व्यर्थ और अशुद्ध व्यक्त भाव को, साधारणता को स्वाहा करती हूं। और अंतर चक्षु से स्वयं को इस पवित्रता की अग्नि में शुद्ध करती जा रही हूं। मैं आत्मा पवित्रता की अग्नि से स्वयं में सुंदर निखार आत्मशुद्धि का निखार सच्चा सोना बनती जा रही हूं। मुझ आत्मा से सारी खाद को, कमजोरियों को जलाकर शुद्ध सात्विक सत्वप्रधान स्थिति में स्वयं को देख रही हूं। मेरा स्वरूप दिव्य बनता जा रहा है। मेरे चारों ओर दिव्यता का प्रकाश फैला हुआ है। दिव्यता के प्रभा मंडल में मैं आत्मा सच्चा सोना बन चमक रही हूं। धीरे धीरे मन की लगन उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ती है। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई, मेरे पिता परमात्मा, मेरे माशुक है। मैं उस परमात्मा पिता की आशिक हूं। अंतर चक्षु से माशुक को निहार रही हूं। कितना सुंदर सलोना माशुक है। दिव्यता से आलोकित तेजोमय स्वरूप धीरे धीरे मेरा मन उसी में रमने लगा है। और उस माशुक के लगन में मगन होती जा रही हूं। उसके स्नेह में समाती जा रही हूं। परमात्मा प्रीत में हो जाती हूं, समा जाती हूं। और धीरे धीरे ये लगन की अगन अनेक बंधनों से मुझ आत्मा को मुक्त करते हैं। ये अगन सारे बंधनों को भस्मीभूत कर रहे हैं। और मैं आत्मा स्मृति स्वरूप निर्मल प्रेम की देवी बन जाती हूं। परमात्मा प्रेम में खो जाती हूं, समा जाती हूं। धीरे धीरे मैं आत्मा स्वयं को पंच तत्व की दुनिया से दूर उस परम धाम में परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव करती हूं। परमात्मा की शक्ति को, सकाश को स्वयं में समाती जा रही हूं। आश से स्वयं में हल्की होती जा रही हूं। बाबा की लाइट और माइट की शक्ति से मेरे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म दग्ध हो रहे हैं। एकदम हल्कापन का अनुभव करने लगी हूं। परमात्मा की लाइट और माइट की सकाश मैं आत्मा शुद्ध और सतोप्रधान बनती जा रही हूं। विकर्म की अलॉय भी जलने लगी है। सारी कमजोरियों के कीटाणु भस्म हो रहे हैं। और मेरे दिव्य स्वरूप का निखार अनुभव कर रही हूं। चारों ओर दिव्य प्रकाश का प्रभा मंडल फैला हुआ है। यह मेरा अनादि सत्वप्रधान स्वरूप है। और धीरे धीरे इस सत्वप्रधानता का प्रवाह चारों ओर प्रवाहित होने देती हूं। जो वायुमंडल को, वातावरण को और प्रकृति को भी शुद्ध और सात्विक बना रहा है। मैं आत्मा इस विशाल कल्प वृक्ष के बीज स्वरूप बाबा के सानिध्य में स्वयं को देख रही हूं। बाबा से सर्व शक्तियों की रसना को स्वयं में भरपूर करती जा रही हूं। कितना सुंदर अनुभव है ये। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को वापस पंच तत्व की ओर, शरीर में प्रकृति की मध्य स्थित होती हूं। ओम